तामसी बैठे, नहीं सुंदर साथ जी ये बिल्कुल गलत, कभी भी इन बातों पर विश्वास न करना। किस पर विश्वास करना? जो स्वामी जी की वाणी कहती है। स्वामी जी की वाणी क्या कहती है कि कैसे बैठी है जीवन दाड़म की कलियां। दाड़म किसको कहते हैं? अनार को। कि जैसे अनार के दाने आपस में फंसे हुए होते हैं, उनको जुदा हाथ से खोल के करें तो करें, नहीं तो अगर सुई भी जुड़े हुए दाने के अंदर डालेंगे तो दाने से दाने का पानी निकल आएगा, लेकिन सुई उसके अंदर धस नहीं सकती। अब यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं, सब जानते ही होंगे कि दाड़म की कलियां परम धाम में कैसे बैठी हुई है सखी, पर शायद ना पता हो, इसलिए बता देना फर्ज समझता हूं। चौकड़ियां लगा के तीन लाइनें नहीं लगी हुई, ये मत सोचो कि मूल मिलावे में, क्योंकि जो चबूतरा है वहां पर पहले राज्य के चरणों में जो बैठी है वो राजसियां हैं, फिर उसके बाद सांसियां हैं, फिर उसके बाद तामसियां आखिरी लाइन में बैठी हैं। नहीं, बैठक ऐसी नहीं। सखियां एक दूसरे के गले में बाहियां डाल के बैठी, खेल कई चाहना है लेकिन जुदाईगी का बड़ा डर है, दहशत है, इसलिए सखियां ऐसे चिपक करके बैठी हैं। राजीव राय कहते हैं यूं हमें बैठियां देख कर हक हसत हम पर, देखें खेल में जाकर भेलियां रहोगे क्यों कर। जब हम चिपक चिपक करके एक दूसरे के साथ बैठने लगी तो राजीव महाराज हंस पड़े, कहने लगे सखियो यहां तो बड़ी चिपक चिपक के बैठ रही हो ना, और जिस वक्त जाओगे ना माया में, एक दूसरे को प्रणाम करना भी अपना अपमान समझोगे, क्योंकि वो जहर भरे तन होंगे जो तुम्हें माया में तन मिलेंगे, वो बदबू वाले तन होंगे, अकड़ वाले, अहंकार वाले तन होंगे। इंतजार करोगे कि वो प्रणाम करे तो मैं करूं, खुद प्रणाम भी नहीं एक दूसरे के करोगे। तो परम धाम में बैठक कैसी है बता देना चाहता हूं। बालकृष्ण जी एक मिनट प्लीज, जल्दी से इतनी देर में मेरे पास आ जाओ इधर। ये वो ज्ञान नहीं है कि खाली सुनी और कथा उठ करके चले गए। स्वामी जी ने वाणी में लिखा है खुद देखो औरों को दिखाओ, पर जब हम खुद ही ना देखें औरों को क्या दिखा देंगे, औरों को क्या बता देंगे परम धाम में क्या रखा है। ये ऐसा इल्म है जैसे जादू सिर पे चढ़ के बोलता है। स्वामी जी कहते हैं वाणी तो वो होनी चाहिए जो सिर पर चढ़ के बोले, कथा थोड़ी है ये कथा नहीं है, ये हमारे घर की चर्चा है, मेरे पिया की बातें हैं, हमारे धनी की बातें हैं, मेरे और उनकी आपसी बातें हैं, जैसे एक पति और पत्नी की बातें होती हैं, ये वो ज्ञान है। ये संसार क्या कथा कहानियों की बात नहीं। तारतम लेने के बाद चितुनी सीखिए और 40 दिन चितुनी करके दिखाइए, जिसको परम धाम ना आएगा नजर ना आए, विधि हम बताएंगे तरीका कि इस तरह बैठ के चित्रणी करो। 40 दिन से पहले ही आपके श्रोता परम धाम में राज्य को देखेगी, श्यामा जी को देखेगी, पर कोई सुंदर साथ करता नहीं। किस लिए? मुफ्त में मिल रहा है, कीमत थोड़ी लग रही। इसकी कीमत पूछनी है तो कभी लक्ष्मी जी से पूछनी, भगवती शेरा वाली से पूछना कि बता जरा परम धाम के एक चौपाई सुनने के लिए तुझे कितनी तकलीफ हुई थी। हमें निस्बत हमारी आत्म के कारण से राजी ने आकर के ये ज्ञान दिया, और क्या लिखा वाणी में कि ओ मेरे सुंदर साथ, इस ज्ञान के लिए ब्रह्मा तरसे, विष्णु तरसे, शंकर तरसे, गीता तरसी और सारे सकल जगत के ज्ञान तरसे, किसी को मिला नहीं, सो तो दिया मैं तुमको। चौपाई बोल रहा हूं, सो तो दिया मैं तुमको, खोले ना बिन तुम, जब मेरी सुध दोगे तुम औरों को तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। अपनी मैं को निकाल देना, राज्य की वाणी लेकर के चलना। राज्य कहते हैं मैं तुम्हारे से जुदा नहीं हो सकता, शरीर तुम्हारा होगा, मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा और मैं सारी वाणी को खुद खोलूंगा, तुम्हारे बिना इस वाणी को कोई खोल नहीं सकेगा, कोई जाहिर नहीं कर सकेगा, किसी को पता ही नहीं परम धाम कहां है तो बताएगा कौन। अब ये चीजें जाहिर होंगी, अब चलिए रास की लीला के अंदर। जैसे ही बांसुरी बजी, सब सखियां तन छोड़ करके बारी बारी से हाँ समझा रहे थे तामसी, राजसी और स्वांसी का अंतर क्या है, फर्क क्या है। परम धाम में तत्व सबका एक है, परम धाम में कोई भी राजसी स्वांसी तामसी नहीं, सब सखियां एक हैं। ये फिर नाम कहां से है? सवाल ये है जी, फिर ये राजसी स्वांसी तामसी क्यों कहते हैं? जिन्होंने बांसुरी सुनी और कुछ भी नहीं देखा, जैसे बांसुरी सुनी तैसे ही स्वामी जी ने लिखा कि कई सखी अपने पति को खाना खिला रही थी और खाना खिलाते हुए रोटी पूछ रही थी कि फुलका डालूं, तो बांसुरी बजी तो पहला पग थाली में, दूसरा पति की छाती पर, पति उनका गिरा। क्यों? होश ही नहीं गई शरीर के पति, आत्मा गई प्रात निकली। जिन्होंने बांसुरी को सुना यानी वाणी को सुना और तुरंत प्राण अर्पण कर दिए, कुछ भी पीछे नहीं देखा, सब कुछ राजी पर जो निसार कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? तामसी सखी। ये है तामसी। तामसी का अर्थ गुस्से वाला नहीं होता। कई लोग कहते हैं जिसको ज्यादा गुस्सा आता है ना वो तामसी होता है। वो एक अर्थ जरूर है, तामस का अर्थ गुस्सा, लेकिन वाणी में तामसी का अर्थ क्या है कि अपने राजी महाराज के नाम पर किसी से सलाह लेकर, विचार लेकर के, पूछ करके नहीं, तुरंत कुर्बान होना, वो तामसी है। फिर राजसी सखियां आई, वो राजसी किनको कहती है? जिन्होंने सोचा बांसुरी तो बज रही है, प्राण तो खींच रहे, पर सोचा कि हाय हाय, क्योंकि हर सुंदर साथ आप जानते हो कि खासकर विशेषकर माताएं घर में जब काम काज करती हैं रसोई में, तो बहुत बढ़िया कपड़े तो नहीं पहने होते, जन साधारण होते हैं कि रसोई में भी मेले हो जाते हैं, वैसे ही कपड़े घरों में पहन रखे थे। सोचा कि एक तो 52 दिन हो गए हैं, दूसरा अपने धनी के साथ को मिलने जाना है, कुछ तो श्रृंगार अपना बदल लेना चाहिए, ढंग का जरा कंगी कुछ सवार तो ले। अब चित तो खींच रखा है राजी महाराज ने और लगी है श्रृंगार करने, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, उठाया, मांग भरना था, मांग की जगह पे और डाल कहां दिया? आंखों में। उठाया काजल, डालना था आंखों में और डाल कहां दिया? मांग में। वस्त्र भी उलट पुलट पहन करके तैयार होकर के भाग रहा। क्या शरीर, उनका भी शरीर कहां गिरा? कोई यहां कोई वहां, शरीर नहीं जाएगा वहां पर। ये राजसी इसलिए कह दिया कि ठाठ बाठ करने लगे कि शरीर को श्रृंगार कर ले, ये सोच लिया कि शायद हमारा शरीर वहां जाएगा तो जाते राजी कहेंगे कैसी शक्ल बना करके आइए, बाल तो देख जरा अपने कैसे बिखरे हुए हैं। उन्होंने समझा कि हम शरीरों के साथ जाएंगे, इसलिए वो श्रृंगार करने लगी। अब इतने में जब भगदड़ मच गई सारी ब्रिज के अंदर, लोगों ने देखा कि हमारी औरतें भाग भाग करके बाहर जा रही हैं, तो लोग अपने घरों को भागे, तो जो लोग लाए से रखा, मेरा सौरा प्या अंत, अरे मेरे जेठ आ गया, अरे तो पति देव आ गए, डर के मारे रुक गए, डर गई माया से, घबरा गई सास ससुर से, लोक लाज से, जेठ से और ससुर से, वो डर गई। इतने में उनके रिश्तेदारों ने ताले कर दिए बंद और उनको कमरों में दिया बंद कि कहाँ जाना, शर्म नहीं आती, घर बार छोड़ के जाओगी। उन सखियों ने क्या कहा कि पति देव, शरीर के पति, ये मट्टी का तन तुम्हारा है, इसको रोक सकते हो, हमारे धनी हमें बुला रहे हैं, आत्मा हमारी जाएगी जाएगी और जाएगी। बस दिल के अंदर इतना दुख बढ़ा लिया, इतनी वो दुख की अग्नि प्रज्वलित कर ली कि जोश और अग्नि इकट्ठी करते साथी शरीर धाड़ धाड़ वहीं घरों में डाल दिए। उन सखियों को स्वास्थ्य सखी कहते हैं। भाई ये फर्क, आत्मा सबकी थी, वो आत्मा सब इकट्ठी भव सागर से पार। अब उधर से बांसुरी बजाते बजाते, ध्यान देना सावचेत होकर के, बांसुरी बजाते 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 श्री कृष्ण जी योग माया के बॉर्डर पर, और इधर जितनी आत्माएं हैं वो काल माया के बॉर्डर पर, दोनों बॉर्डर पे खड़े। जब तक हुक्म होगा नहीं तब तक अंदर जा सकती नहीं। तो श्री कृष्ण जी महाराज अब किशोर स्वरूप अति सुंदर ऐसा रूप बना रखा है कि ऐसा स्वरूप तो कभी ब्रिज के अंदर भी नहीं धारण किया था, इतना मोर मुकुट, ऐसा नूरमय तेज, एक तो जुदाएगी थी, दूसरा इतना स्वरूप सुंदर था, इसलिए आत्माएं तड़प रही हैं कि कब चरणों के साथ निपटा लें और हमारे दुख दूर हो जाएं। इतने में श्री कृष्ण जी क्या बोले, ध्यान देना, ओ 52 साल पहले, 52 दिन पहले जो श्री कृष्ण जी को ताने मारे थे सखियों ने, तुम तो निर्लज्ज हो, पर पुरुष हो, बड़े प्यार से खड़े हो गए, कहने लगे सखियों, अरे सारी की सारी इकट्ठी सर्वसम्मति के साथ मीटिंग करके आज इधर आई हो, अच्छा 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 अच्छा, ब्रिज से तुम्हारा दिल तंग आ गया होगा, ऊब गया होगा, वृंदावन की सैर करने के लिए आए हो, आओ, बड़ा अच्छा सुंदर वृंदावन है, खूब सैर कर लो। पर ऐसे समय में, क्योंकि संध्या का समय आधी रात हो जाती है ना अंधेरे में, कि ऐसे समय में, अरे तुम तो कुलवंती नारी हो भाई, तुम्हारे बच्चे दूध के लिए रोते होंगे और तुम्हारे पति तुम्हारी राह देखते होंगे, और मैं तो एक पर पुरुष हूं और वो भी निर्लज बेहया हूं, एक पर पुरुष के पास आधी रात्रि के समय में करने क्या आई हो भाग्यवानों, इतनी बात कहने की देर थी। वो आदमी बात गुस्से में आके कह तो जाता है, कुछ जो कोमल हृदय की सखियां राजसी श्वास से थी नहीं सहन कर सकी कि हाय हाय, ये शब्द अब याद आया पीछे कि हमने अपने राज्य को ये शब्द कह दिए थे कि तुम पर पुरुष हो, वही एक मूर्छित सी हालत में, बेहोशी, आत्मा मरती नहीं है, बेहोशी की हालत में से होकर के बैठी। अब जो जरा कुर्बान होने वाली, फिदा होने वाली अपने धनी पर, जिनको तामसी सखी कहते हैं, उनके सरदार एक सखी है जिसका नाम इंद्रावती है, वो कहती है, कृष्ण कन्हैया जी कुछ और प्रवचन भी है या कि बात खत्म हो गई, कुछ प्रवचन और करना है, आपका प्रवचन बहुत सुंदर है, घबराने की कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें इस बात के लिए तो नहीं कहा, अरे कम से कम मुझे ना देखा होता, अपने को ना देखा होता, अपने मायके को तो देखा होता, जब तुम सारी की सारी घर बार छोड़ के भाग आई हो तो तुम्हारे पेके, जिसको पंजाबी में हम लोग कहते हैं, मायके वाले क्या कहेंगे, अरे उसकी लड़की भाग गई है, उसकी लड़की भाग गई, ना तो तुमने अपने मायके की लाज को देखा और ना तुमने अपने ससुराल की लाज को देखा, दुनिया वाले तुम्हारे मायके ससुराल वालों को ताने दे रहे होंगे ब्रिज में कि तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी लड़कियां घर बार छोड़ के भाग गई हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती, उनके कलंक लग रहे होंगे, मैंने तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाने के वास्ते ये बात कही है, इसलिए कृपा करके तुम जो है जल्दी से वापस चले जाओ। ये प्रवचन भी सुन लिया। फिर इंद्रावती सखी कहती है जी कुछ और भी बात है शास्त्रों की बाकी या कुछ, सारी बातें कह दी। तब बोले कि ऐ मेरी सखियो, मैं कोई तुम्हें अनुचित शब्द तो नहीं कह रहा, वेदों के हिसाब से, देखो प्रमाण दिया है स्वामी जी ने, वाणी के अंदर लिखा है कि मैं वेदों के हिसाब से कह रहा हूं कि जो शरीर का पति है, ध्यान दो जरा कितना ऊंचा ज्ञान प्रणामी धर्म देता है, जो किसी भी शायद कह तो दिया है, श्री कृष्ण अक्षातीत पार ब्रह्म खड़े कह रहे हैं कि सखियो, शरीर का पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोड़ी हो, शराबी हो, अवगुण ही अवगुण, खूट ही खूट उसके अंदर भरे हुए हो, पर शादी हो जाने के बाद मरते दम तक कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए, वही कुलवंती नारी, पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं, और तुम ऐसे में छोड़ के आ गए हो। फिर इंद्रावती बोली, कहने लगे जी ये भी वचन आपके जो है वेदों के हिसाब से प्रवचन बिल्कुल ठीक है, और कुछ कहना और कही, फिर जरा हमारी सुन जरूर लेना, हम आपकी सुन लेना बड़ी शांति से, एक बात हमारी भी सुन लेना। कहने लगे भाई मैं कोई आपको प्रवचन करने के लिए थोड़ा खड़ा हूं, मैं तो तुम्हारी लोक लाज बचाने के लिए, तुम्हें एक अच्छी रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे घरों को वापस भेज रहा हूँ कि जाओ अपने घर लौट के चले। कहने लगे जी बिल्कुल ठीक, आपके प्रवचन वेदों के प्रमाण से, शास्त्रों के हिसाब से, दुनिया की लोक लाज के हिसाब से बराबर ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, उसका उत्तर आप दे दीजिए, हम अभी वापस लौट जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे। कह लगे क्या प्रश्न? कह लगे आपने जो कुछ बताया वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताया कि शरीर का पति यदि लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, कैसा हो, भेड़े से भेड़ा क्यों ना हो, अवगुणी से अवगुणी क्यों ना हो, उसको नहीं ना छोड़ना चाहिए, तुमने शास्त्रों के प्रमाण से बताया है। तो शरीर तो मिट जाने वाला है और आत्मा कभी भी मिटती नहीं है, ये बताओ अगर शरीर के पति के वास्ते इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हो तो आप हमारी आत्मा के जब धनी हो और अखंड सुख के देने वाले सर्व गुणों के निधान भरे हुए हो, ऐसे पति को छोड़ करके कहां जाना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाण दे दो, हम अभी वापस चले जाते हैं। ये थी इंद्रावती सखी का सवाल और श्री राजजी महाराज का उत्तर बोलती बंद। कहां से उत्तर लाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं बोलती बंद, कहां से उत्तर लाए? तो हंस करके कहते हैं अरे सखियो, मैं तो तुम्हें मजाक कर रहा था, देख रहा था कि कहीं माया का असर कोई बाकी तुम्हारे अंदर है तो नहीं, मैं तो तुम्हारी इंतजार में था, देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर वृंदावन रचाया है, आओ योग माया में प्रवेश करो, हुक्म दिया आओ एंटर करो, इधर योग माया में आ जाओ। तब रोज हम वाणी में बोलते हैं योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया, वो पहली जो राधिका वाला तन था छोड़ दिया श्यामा जी ने भी, उसके अंदर श्यामा जी थी, वो तन छोड़ दिया, जो बरसाना के लड़की थी छोड़ दी राधिका, वृखभान की जो नंदिनी थी वो तन छोड़ दिया, अब नया तन श्यामा जी ने सबसे पहले प्रवेश किया योग माया में और तन अति सुंदर, योग माया को आज्ञा दिया कि जैसे मेरे सुंदर तन किशोर है सब आत्माओं को ऐसे ही तन दे दो, सब सखियों को जैसा तन श्यामा जी को मिला वैसे ही तन अति सुंदर सब सखियों को मिल गए। अब श्री राजीव राय ने नटवर भेष और पाठ तो शायद बड़े पढ़ लिए होंगे, मैं ही बदनसीब हूं जो कभी वाणी पढ़ नहीं पाता, इतने इतने बाल थे श्री कृष्ण जी के अति सुंदर घुंघराले कि चोटी गुथ बनाई गई थी, चोटी गुथी हुई थी, जिसने पढ़ना हो सिर्फ वाणी में श्रृंगार में रास में पढ़ लेना, श्री राजजी महाराज के जो लंबे लंबे बाल थे बैनी लेके वांसा ऊपर, वैनी कहने गुथनू पंजाबी भाषा, ऐसे थे कि उसकी कमर के ऊपर जो है बाल गुथे हुए श्री राजीव राय का श्रृंगार, हर अंग को ऐसा कस रखा, क्यों? नटवर भेष वालो लीजो ते नटवर भेष जी, लीजो भेष रलिया मनो वालो कीजो ते नटवर भेष जी, जैसे नाटक ये नट नहीं होते नटनी नट और नटनी, तो ऐसी बिल्कुल उन्होंने अपने केसों को भी कस रखा है, एक गुत बना रखी है, मुकुट जरूर पहन रखा है, बांसुरी हाथ में है, लेकिन सारे वृंदावन के अंदर बांसुरी की लीला नहीं हुई, बांसुरी एक ही बार बजाई थी, बस भूलने जाना इस बात को, केवल बुलाने के लिए, उसके बाद उस वृंदावन में ले गए, ले जा करके अति सुंदर लीला और ढंग के साथ जो लीला परमधाम के अंदर श्री राजजी महाराज प्रेममयी करते हैं वो उन आत्माओं के तनों के साथ करके अक्षर को दिखा रहे हैं। अब वो लीला क्या है उसका बखान तो नहीं अब यहां किया जा सकेगा, कैसी कैसी लीला, कैसी कैसी नृत्य, कैसे कैसे वो चीज थी, वो जिसने पढ़ना हो स्वरूप साहब वाणी पद राय और सारे नृत्य की लीलाएं जो है उसमें नाटक लीलाएं लिखी है उसको खूब पढ़ लीजिए। राम ते जिसको बोलते हैं, नृत्य कहते हैं, नाटक कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, उसमें रामते करके शब्द वाणी में लिखा है, उन रामतों को खूब पढ़ो। वो लीला कर रहे थे जब, तो क्या हो गया, अक्ष ब्रह्म ने वो लीला कभी प्रेम की देखी नहीं थी, इतना मुग्ध हो गया कि वो एक्चुअली में क्या समझने लगा, ध्यान देना जरा, रास से भी अब ले चलेंगे राजी महाराज निकाल करके। अक्षय ब्रह्म ऐसा मुग्ध हो गया, ऐसा नशे में चूर हो गया, ऐसा आनंद में लीन हो गया कि उसने क्या समझा कि ये लीला जो है योग माया में ये नहीं हो रही, ये लीला साक्षात परम धाम में हो रही है और मैं परम धाम के अंदर ही इस लीला को देख रहा हूं। और सखी अभी भूल गई, उनको होश ही नहीं है कि हम योग माया में हैं कि परम धाम में हैं। तब राजी ने कहा, भाई ये तो काम गड़बड़ है, अगर दोनों के दिल में ये बात बैठ गई, अक्षय ब्रह्म ने ये सोच लिया कि मैंने परम धाम के अंदर चला गया हूं, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, कुछ लीलाएं करने के बाद, अब पहले बता चुका हूं कि जो चीज योग माया में एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश होता नहीं, उस तन को ले जा करके ध्यान के साथ अब यहां से गायब हो रहे, आदृष्ट हो रहे, राधिका जी के पास चले गए, जिनके अंदर श्यामा जी की आत्म बैठी हुई है, उनको जाकर के कहा, राधिका रानी छोड़ सारी सखियों को, जितनी तू मुझे प्यारी लगती है इतनी भला और कोई है थोड़ा, चल तू मेरे साथ, हम दोनों और आगे चलेंगे और वहां चल के जो है अति और प्रेम में लीला करेंगे, सखियों को छोड़ तू। अब राधिका जी को वहां अभिमान आ गया, श्यामा जी है, माया है भाई, परम धाम नहीं है, भले अखंड है लेकिन नाम क्या रखा है, योग माया, इसलिए उनमें भी श्यामा जी को अभिमान आ गया। क्या बात, अभिमान आ गया कि कृष्ण कन्हैया सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं, तभी तो सबको छोड़ने के लिए कह रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, इसलिए कहने लगे, कृष्ण कन्हैया देखो ना, सारी रात तुमने राम से करा करा के इतना थका दिया है भाई, प्लीज इस वक्त तो चलने की हिम्मत नहीं है, कोई कन्वेंस का अरेंजमेंट करो जरा, कोई ना कोई ऐसा उपाय करो, चलना भारी है, तुमने सारी रात तो हो गया थका दिया हमें, नचाते नचाते नाज आ गया, जैसे उर्दू भाषा में कह देते हैं लोग कि खुदा जब हुस्न देता है तो नाज आता है, वो चीज वहां फिट तो नहीं होती, लेकिन श्यामा महारानी को अभिमान अपने इस चीज का आ गया कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार माया में, इतना योग माया है फिर भी वहां अभिमान आ गया और कहा, जी मुझे उठवाइए या कोई ऐसे साधन से ले चलो, मैं चल नहीं सकती। उन्होंने कहा, वाह ऐसी क्या बात है राधिका रानी, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। फिर तो बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, बैठो नीचे, मैं ऊपर बैठती हूँ। अब ये शुद्ध नहीं थी कि कौन है और किसके कंधों पर बैठना है, और मैं थक गई और वो नहीं थके, बस वो नीचे बैठे और राधिका जी ने एक पांव उठा के, अभी रखना ही था, रखा क्या था, और नीचे से निकले और राधिका जी प्राक जाकर के गिरी बेहोश, वहां एकदम गिरी और बेहोश होगी। अब उन्होंने क्या किया, वो तन जो था एक पेड़ की आड़ में छुपा के खड़ा कर दिया कि जो किसी को नजर ना आए, अक्षर की आतंक, अक्षर धाम में सपना जब टूट गया एकदम जागरूक हुआ, राज्य ने अपनी शक्ति वापस परम धाम खींची। ध्यान के साथ तन ज्यों का त्यों खड़ा है, क्योंकि योग माया में जो चीज एक बार बन जाती है उसका नाश होता नहीं, उस तन का नाश नहीं हुआ, तन चेतन है, छुपा के खड़ा कर दिया, अक्षर की आत्म अक्षर ब्रह्म के तन में जागृत होगी जैसे किसी का सपना टूट जाता है। ये क्यों किया, ताकि इसका भ्रम मिट जाए कि ये लीला परम धाम में नहीं हो रही, ये लीला योग माया में हो रही है, इसलिए ये ब्रह्मा जो था, ये जो जुदाएगी जो थी, राजीव राज को दिखानी पड़ी वहां। अब अक्षय ब्रह्म जब चौंका आतंक, अब वो रास का सुख है, वो आनंद जो परम धाम का देख रहे थे, एकदम आत्म चौकी, अरे कौन वन कौन सखी कौन वृंदावन कौन हम, मैं कहां गया, अरे मैं तो मुकुट बंसरी और वृंदावन वो सखियां वो सारी चीज गई कहां। एकदम एट वंस उसी वक्त राजी से अर्जी की कि ऐ मेरे धनी कुछ नहीं मांगा कर। ये जो ब्रिज की लीला ध्यान देना क्या मांग लिया, ब्रिज की लीला 11 साल 52 दिन तक आपने मुझे दिखाई है, ये भी मुझे अखंड करके दे दो यहीं पर, और जो रास अभी आप दिखा रहे थे ये भी अखंड कर दो, अब मैं इनके बिना रह सकता, दोनों चीजें चाहिए मुझे, जो सदा मेरी आंखों के सामने रहे, ब्रिज की लीला भी रहे और रास की लीला भी रहे, दोनों को अखंड करके मुझे दिखाइए, मैं इसके बिना अब नहीं रह सकता। अब ध्यान दो, साचेत हो जाओ, शक्ति तुम्हारे पास ठंड है, रास का कभी नाश नहीं होगा, योग माया में हो रही देखो मैं, और ब्रिज को अखंड करना चाहते हो ध्यान दो, तो वो ब्रिज जो है जैसे सखियां योग माया के ब्रह्मांड में आई थी तैसे ही उधर प्रलय कर दिया था। अब इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में कोई पूछना चाहे या दिल के संशय मिटाना चाहे, ये सारी दुनिया ही खत्म हो गई, पाताल से लेके वैकुंठ तक प्रलय हो गया, कुछ भी बाकी नहीं था। अब इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण यही है, एक बच्चा हमारा गुम हो जाए जब तक मिले नहीं चैन नहीं आता, ब्रिज और गोकुल से 12,000 गोपियां गई लेकिन उनको कोई भी ढूंढने गया नहीं, क्यों, क्योंकि पीछे कोई था ही नहीं, ब्रह्मांड में रहा ही नहीं तो ढूंढने कौन जाता या रोता कौन या रिपोर्ट कौन करता। जैसे ही आत्माएं उन तनों में से निकली तैसे ही काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया। अब इसलिए अक्षय ब्रह्म कह रहा है कि ऐ हमारे धाम के धनी, ब्रह्मांड तो मैं नया बना लूंगा और उन जीवों को जो ब्रिज में गोकुल में और मथुरा में थे आपके हुक्म से मैं यहां ले आऊंगा योग माया में ब्रह्मांड में, पर कृष्ण कौन बनेगा, ध्यान के साथ समझिए, जिसको नहीं समझाई शर्म ना करना, मैंने पहले दिन भी अर्जी कर दी थी, बोले नहीं भले हाथ खड़ा कर दे तो मैं उतने में समझ जाऊंगा कि समझ नहीं है, क्योंकि अक्षय ब्रह्म ने क्या मांगा है कि मुझे ब्रिज भी अखंड करके दो और रास भी अखंड करके दो, तो राजी ने क्या उत्तर दिया कि रास तो अखंड है हो रही है उधर देख, देखा रास हो है वहां गोपियां हैं वृंदावन है सब कुछ है, कहने लगे जी ब्रिज भी अखंड करके दो, तो कहने लगे जैसे इन सखियों की आत्माएं वहां से योग माया में आई है इसी तरह से ब्रिज गोकुल और मथुरा जिन जिन के साथ हमारी लीला हुई है उन जीवों को इधर ले आओ अखंड कर दो। आई समझ के नहीं आई, अब सिर्फ उन जीवों को जो महाप्रलय में आ गए हैं उनको वहां से निकाल लो, अक्षय ब्रह्म निकाल सकता है क्योंकि एक खिन में बना सकते हैं और एक खिन में मिटा सकते हैं, इसलिए उन जीवों को निकाल लो और अव्याकृत योग माया के ब्रह्मांड में नई ब्रिज नई गोकुल नई मथुरा नई जमुना बना करके वो कर दो। कहने लगे जी वो तो कर दो, कृष्ण किसको बनाओगे, वहां तो कृष्ण आप थे और मैं बना हुआ था, बंसरी बज रही थी, अब किसको बनाऊंगा। कहने लगे हाँ वो भी चिंता मत करो, हमने विष्णु भगवान को वायदा दे रखा है कि तुझे भवसागर से पार करके अखंड करेंगे, इसलिए विष्णु भगवान को निकालो उस ब्रह्मांड से और यहां करो अखंड, तन उसको 12 साल का ही देना, जितने तन तक हमने लीला की है इसलिए वो श्री कृष्ण वो विष्णु भगवान जो वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिया था जिसने और यशोदा ने जिसको पाला था वो कृष्ण वो विष्णु भगवान कहां आ गए, बोलो योग माया में आके अखंड बन गया, और अब उसका नाम क्या बन गया, बाल मुकंद, ये है विष्णु भगवान। ब्रजाखंड हो गई। वो बंसरी बजने लगी, गोपियां आने लगी, कंस भी अखंड, पूतना भी अखंड। क्योंकि पूतना को अखंड नहीं करोगे तो लीला कौन करेगी। अघासुर भी अखंड, बघासुर भी अखंड। तभी तो स्वामी जी ने कहा है कि पापी से पापियों को भी अगर कोई भाव से पार कर सकता है तो कौन कर सकता है। अक्षराती के बिना ये शक्ति किसी के पास नहीं। शास्त्रों को पढ़ो, अपनी संशय मिटाइए। सुंदर शास्त्र जी, ये कोई थोपने वाला ज्ञान नहीं है किसी के साथ। संशय मिटाओ, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है जो लो आत्म ना देवे साथ के अंदर आत्म अपना मन ही गवाही ना दे। लाख बार कोई कथा सुनते रहे बैठ करके ज्ञान, तभी जो है उसको यकीन नहीं होता। और जब यकीन ठोस हो जाता है फिर आदमी मर मिटता है लेकिन अपने धर्म से एक कदम भी पीछे हटता नहीं। ब्रिज भी अखंड हो गई और रास पहले ही अखंड है। इतने में वो अब गोपियों का क्या हाल हुआ थोड़ा 2 मिनट वो भी सुन लीजिए।